ओमज्ञानत मिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। पिछले कई रविवारों से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के एक प्रसंग की चर्चा चल रही है। महाराज निमि के पास नव योगेंद्र पधारे हैं। नव योगेंद्र ये परमहंस साधु हैं, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, महाराज ऋषभ देव के पुत्र हैं। और जब वो महाराज निमि के पास आए तो स्वागत करने के बाद तुरंत महाराज निमि ने उनसे 9 सवाल किए, जिनके एक के बाद एक जवाब नव योगेंद्रों ने दिए। पहला सवाल महाराज निमि का ये था कि भौतिक हमारे जीवन में, इस संसार में आत्यंतिक क्षेमम, सबसे ऊंचा हित क्या है मनुष्यों के लिए, सबसे ऊंची भलाई किस चीज में है, कौन सा वो परोपकारी कल्याण कार्य है, कौन सा वो एक कल्याण का कार्य है जिससे वास्तव में सबका हित हो सकता है। नव योगेंद्रों ने उत्तर देना शुरू किया। उनमें से पहले योगेंद्र हैं जिनका नाम है कवि, उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी भलाई चाहता है और हर एक सज्जन व्यक्ति अन्यों की भलाई भी चाहता है। तो वास्तव में हमारे और अन्यों की भलाई कैसे हो, हमारा हित किस में है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी को लगता है कि हमारा हित इसमें है कि हम बहुत पैसे कमाएं, खूब भोग करें, किसी को लगता है कि हमारा हित इसमें है कि हम समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएं, किसी को लगता है कि हमें ऐसे प्रभाव अन्यों के ऊपर मिलना चाहिए जिससे कि हम उनका जीवन नियंत्रित कर सकें, किसी को लगता है कि ऐसे सिद्धियां प्राप्त करेंगे हम जिनसे हम तरह तरह के चमत्कार कर पाएंगे, ये हमारा हित है, इसमें हमारी भलाई है। और कोई सोचते हैं निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ये इसमें मेरा हित है। विरला ही ऐसे कोई लोग मिलते हैं जो परम सत्य श्री कृष्ण को जानकर इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमें केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करना होगा। भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने से ही हमारा सच्चा कल्याण हो सकता है। तो इसी बात की पुष्टि अब श्री कवि कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से हर कार्य में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, हर एक कार्य को करते समय, हर एक शब्द को बोलते समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए ये सारे हमारे कार्य। कायेन वाचा मनसैन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। तो हमें ऐसे भगवान नारायण को हमारे समस्त कार्य समर्पित करने चाहिए। वैसे समस्त कार्य अर्पित करने चाहिए तो क्या इसका मतलब है कि मैं डाकू बनूं और मेरे डकैती के कार्य जो है भगवान को समर्पित करूं? क्योंकि यहां बताया गया है करोति यत यत सकलम परस्मै, यत यत जो भी आप काम करते हो भगवान को समर्पित करो। तो मेरा पेशा डाकू का है तो मैं डाका डालूंगा और फिर ये कार्य जो है भगवान को समर्पित करूंगा। कोई कहेगा मैं खूनी हूं, मैं लोगों का खून करता हूं, तो मैं भी लोगों का खून करूंगा और भगवान को अर्पण करूंगा। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो एक साधारण उदाहरण देते हैं। जैसे किसी भी देश में लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है अपना अपना पेशा चुनने के लिए। कोई अध्यापक बनता है, कोई व्यापारी बनता है, कोई किसान बनता है, तो ऐसे अलग अलग लोग अपने अपने इच्छा और वृत्ति के अनुसार कोई ना कोई अपना व्यवसाय पेशा नौकरी आदि ढूंढ लेते हैं। तो सरकार या आपको जबरदस्ती नहीं करेगी कि आपको अध्यापक ही बनना है, आपको किसान ही बनना है, जो चाहे आप काम करो, ये छूट देती है सरकार। परंतु सरकार छूट देती है पेशा चुनने में, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कहती है कि चलो खूनी भी बनना है तो खूनी बन जाओ, डाकू भी बनना है तो डाकू भी बन जाओ, आतंकवादी बनना है तो आतंकवादी भी बन जाओ। नहीं, ये छूट नहीं दी जाती है। ऐसे अनेक कार्यों को करने के लिए छूट दी जाती है जो कानून के अंतर्गत हैं। जो कानून के बाहर वो कार्य हैं उनको करने के लिए सरकार अनुमति नहीं देती है। तो जब सरकार कहती है कि प्रजा को जो कार्य करना है वो कर सकते हैं, इसका मतलब है कि कानून के अंतर्गत जो कार्य है वो आप कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब नव योगेंद्र यहां पर कहते हैं कि हमारे प्रत्येक कार्य को हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए, इसका मतलब है कि भगवान के कायदे और कानून के भीतर अंतर्गत जो कार्य आते हैं उन्हीं को केवल हम समर्पित कर सकते हैं। एक बार जब प्रभुपाद जी पत्रम पुष्पम फलम तोयम इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे कि आप पत्र पुष्प फल जल आदि भगवान को अर्पण कर सकते हो भक्ति भाव से और भगवान अवश्य आपके उपहार को, आपके भेंट को स्वीकार करेंगे, तो एक व्यक्ति ने पूछा था प्रभुपाद जी से कि क्या मैं शराब पीने वाला आदमी हूं तो मैं शराब अर्पण करके पी सकता हूं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने यह नहीं कहा है कि पत्र पुष्प फल जल शराब भी मुझे अर्पण करो, ऐसे नहीं कहा भगवान ने। इसलिए शराब हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। जो चीजें वर्जित हैं उनको अर्पण करना भी वर्जित है। उसी तरह से जो कार्य हम भगवान के लिए करते हैं, जो दुनिया में करते हैं, वो ऐसे ही कार्य होने चाहिए जो भगवान के कानून के भीतर हैं, अन्यथा ऐसे कार्यों को हमें करना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे श्रील जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर सुंदर ढंग से समझाया है कि हमें कैसे कार्य करने चाहिए इस भौतिक जगत में। दूसरे शब्दों में जो दुष्कृति है, जो बुरे कर्म है, पाप कर्म है, उनको भगवान के चरणों में अर्पण नहीं किए जा सकते। और इस बात की भी चर्चा हम संक्षेप में कर चुके थे पिछली बार कि जो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं वो अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, परंतु कार्य करने का उद्देश्य होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति। तो मैं मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करूंगा, और क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पुण्यवान हूं तो थोड़ा मेरा धन जो है मैं कमा लेता हूं, थोड़ा भगवान के लिए दे दूंगा। तो कर्मों का फल है मेरा भगवान, ये मेरा धन है, तो थोड़ा कुछ भगवान को अर्पण करूंगा। तो क्या ये भक्ति है? शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि इस कार्य को करने का उद्देश्य था मेरी इंद्रिय तृप्ति, भगवान की प्रसन्नता नहीं। तो यदि कोई एक साधारण व्यक्ति ऐसे अपने दिन में दैनिक कार्य करता है, अपना व्यवसाय करता है, परिवार का भरण पोषण करता है, परंतु उसका उद्देश्य रहता है मेरी इंद्रिय तृप्ति, और फिर थोड़ा धन थोड़ा समय वो भगवान के लिए देता है, तो वो शुद्ध भक्त नहीं कहलाता। शुद्ध भक्त वो होता है जो कि अपने कार्य ही इस उद्देश्य से संपन्न करता है कि यह भगवान की प्रसन्नता के लिए है। जैसे साधारण व्यक्ति अपने व्यवसाय को कर संभालता है, सुबह उठ के स्नान आदि करता है, भोजन ग्रहण करता है, बहुत कुछ करता है, परंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग के लिए करता है। दूसरी ओर जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भी भले व्यवसाय कर सकते हैं, वो भी भले अपने दैनिक कार्यों में संलग्न रह सकते हैं, परंतु उनके कार्य करने का उद्देश्य क्या रहता है? इन कार्यों के द्वारा मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूं। जो भी व्यवसाय के फल मिलेंगे मुझे वो भी मैं भगवान के चरणों में रखूंगा, परंतु मेरे कार्य हैं वो भी अपने आप में भक्ति हैं। तो शुद्ध भक्त के कर्मों के फल की बात तो दूर है, शुद्ध भक्तों के कर्म भी होते हैं, वो भी भगवान को समर्पित होते हैं, ये शुद्ध भक्ति है। जब हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि करते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, स्मरण करते हैं, उनके अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं इत्यादि, और निष्कपट भाव से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो फिर ये शुद्ध भक्ति है। तो हमारे जप के फल को हम भगवान को अर्पण करेंगे इसकी आवश्यकता नहीं है। हम जब जप करते हैं वो जप का कार्य ही भगवान को समर्पित किया हुआ होता है। हम जप करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ना इसके लिए कि हमें कुछ भौतिक लाभ मिले। हम जप करते हैं ताकि हमारा व्यवसाय ठीक से चले, परीक्षा में अच्छे नंबर आए, समाज में प्रतिष्ठा मिले, नहीं, ऐसे नहीं। तो ये है शुद्ध भक्ति। तो नव योगेंद्र महाराज निमि से कह रहे हैं कि हमें ऐसे भगवान के चरण कमलों में प्रत्येक कार्य को, वचन को समर्पित करना चाहिए। और जब ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है? वो अगले श्लोक में कहते हैं, भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातो बुध आभजेतम्। वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो जाता है, भगवान को पीठ दिखला देता है, भगवान को भूल जाता है, भगवान की सेवा नहीं करता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय अज्ञान का अंधकार आ जाता है। उसकी वजह से उसके जीवन में भय निर्माण हो जाता है। तो इस संसार में व्यक्ति भयभीत क्यों होता है? क्योंकि भगवान को पीठ दिखाया हुआ है उसने, भगवान से विमुख हो चुका है। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण कारण भय का बता रहे हैं, मूल कारण, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। भक्ते ही कयेषां गुरु देवतात्मा, केवल एकांत की भक्ति करने से भगवान श्री कृष्ण के भय से हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। ये भय तन मायया, भगवान की माया शक्ति के द्वारा ये निर्मित है भय, और भगवान की माया शक्ति को पार करना है तो श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए एक गुरु के निर्देशन में। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि केवल भय को दूर करना है और भय का कारण है अज्ञान, तो मैं केवल जान सकता हूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, बस इतना मेरे लिए काफी है। परंतु नहीं, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये जो माया शक्ति है मेरी, हे अर्जुन, ये बहुत प्रबल है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। दुरत्यया, दुरत्यया अर्थात उसको पार करना प्राय असंभव है। परंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण को स्वीकार करता है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, वो अवश्य इस माया शक्ति को पार करके मेरे धाम को प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं जो कृष्ण भक्ति करते हैं निडर रहते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं। प्रभुपाद के जीवन में भी कितने खतरे आए, परंतु वो डरे नहीं, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण के इच्छा के अनुसार सब कुछ होगा। प्रहलाद महाराज भी डरे नहीं, अम्बरीश महाराज डरे नहीं, ऐसे नवयोगेंद्र श्री कवि बता रहे हैं कि भय का वास्तविक कारण क्या होता है। तो कृष्ण भक्ति सारे समस्याओं का समाधान है। कोई यदि ऐसा समझे कि केवल हम अहम ब्रह्मास्मि कह के भय को पार कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले लोग हैं, जो निराकारवादी हैं, तत्त्वम असि कहने वाले हैं, उनका कथन है कि यह दुनिया मिथ्या है, ये दुनिया है ही नहीं, ये केवल एक भ्रम है, ऐसे उनका कथन है। एक चुटकुला इस प्रकार से है कि एक बार एक व्यक्ति इस निर्विशेषवाद, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका प्रचार किसी दूसरे व्यक्ति को कर रहा था। अब हुआ ये कि वो जब जा रहा था तो उसके पीछे एक हाथी आ गया, हाथी छूट गया था कहीं से। तो जब हाथी उस मायावादी के पीछे भागने लगा, तो पहले वाले व्यक्ति ने, जिसको कि इसने मायावाद का दर्शन सुनाया था, वो कहने लगा कि अरे क्यों भाग रहे हो, ये तो माया है ना, हाथी नहीं है ना, ये सब माया है, तो डर क्यों होना चाहिए तुमको। तो वो व्यक्ति कहने लगा, मेरा भागना भी तो माया है ना, ये भी तो नहीं है सच। तो ऐसे तर्क करने से कोई लाभ नहीं है। सत्य तो ये है कि ये भौतिक जगत है, इसका अस्तित्व है, केवल इतना है कि ये क्षणभंगुर है, स्थायी रूप से रहता नहीं है, थोड़े समय के लिए रहेगा फिर नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हर चीज का अंत यहां होना है, इसलिए हमें भय लगता है। जब कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अपने आप फिर हम भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं, जिससे सुख मिलता है। आगे श्री कवि कहते हैं कि एक भक्त को चाहिए कि दुनिया में वो जो भी कुछ देखता है उस हर एक वस्तु का संबंध वो भगवान श्री कृष्ण से करे,
किसी भी वस्तु को वो भगवान से भिन्न नहीं समझे।
भगवान से भिन्न किसी वस्तु को समझना इसका मतलब है कि मानो हम सपना देख रहे हैं। हम जब सपना देखते हैं कि हम राजा हैं या हम कोई भी हैं, तो हमारे राजा होने का जो सत्य है केवल हमारे सपने तक सीमित है। सपने के बाहर इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक उसी तरह से जब हम इस संसार को स्वतंत्र देखते हैं, भगवान से अलग देखते हैं, तो ये भी एक सपना है। इसको माया कहते हैं। तो श्री कवि कहते हैं कि हमें जानना चाहिए कि ये संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई है, भगवान के द्वारा ये नियंत्रित है और भगवान के द्वारा ही इसका संहार होगा। कोई भी यहां स्वतंत्र नहीं है, केवल स्वतंत्र हैं तो भगवान।
आगे चल के वो बताते हैं,
इसलिए हमें सतत भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। भगवान कृष्ण का नाम यहां श्री कवि रथांग पाणी कहते हैं। रथांग पाणी, रथांग रथ और अंग, अंग का मतलब यहां है चक्र, पाणी मतलब हाथ। तो जिन्होंने रथ के चक्र को अपने हाथ में धारण किया था, कब किया था? भीष्म देव के साथ जब वो लीला कर रहे थे, कहां पे? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। तो श्री कृष्ण ने रथ के चक्के को उठाकर भीष्म देव की ओर आक्रमण करने भाग के आ रहे थे। तो इसलिए इस दृश्य को देखते हुए, याद करते हुए श्री कवि कहते हैं भगवान कृष्ण को रथांग पाणी। कहते हैं हमें रथांग पाणी, इनके पवित्र नामों का, कार्यों का इत्यादि सदैव श्रवण कीर्तन, गीतानि नामानि तद अर्थकानि गायन विलज्जो विचरेत असंगः। ऐसे भक्त को चाहिए कि सदा घूमे, इधर उधर घूमे भगवान का गुणगान करते हुए, जैसे नारद मुनि घूमते हैं, जैसे स्वयं नव योगेंद्र घूमते हैं, जैसे चतुष्कुमार घूमते हैं। परंतु प्रचार करने के लिए इधर उधर घूमने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई गलत स्थान में चले जाएं, कोई व्यक्ति शराब के अड्डे में पकड़ा जाए, लोग बोले कि शराब के अड्डे में तुम क्या कर रहे हो, मैं प्रचार करने आया था। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे प्रचार करने के लिए। शराब के अड्डे के बाहर भी बहुत लोग होते हैं जिनको प्रचार करने की आवश्यकता है। तो विचरेत जब बताया गया कि हमें विचरण करना चाहिए, असंगह भी बताया गया है कि हमें निरासक्त होके भौतिक पदार्थों से कोई इंद्रिय तृप्ति की भावना न रखते हुए तुरंत उनका संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हुए हमें करना चाहिए। और ऐसे ही भगवान के अनेक नामों का गायन, कीर्तन आदि सब हमें करना चाहिए। तो ऐसे भी बताया गया है कि अनेक लोकों में भगवान के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि भगवान अलग अलग लीला संपन्न करते हैं अलग अलग लोकों में। ऐसा नहीं है कि केवल भारतवर्ष में भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी लोक में भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान तो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक में प्रकट होते हैं और हर जगह उनके लीलाओं के अनुसार भगवान के अलग अलग नाम रखे जाते हैं भक्तों के द्वारा। और इस पृथ्वी लोक पर भी हम देखते हैं अलग अलग जगह भगवान के अलग अलग नाम रखे जाते हैं, कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण का ही नाम देखिए, अब आप बंगाल में जाएंगे तो कोई कहेंगे केशटो, भगवान कृष्ण का एक नाम है। और तमिलनाडु में जाएंगे, क्या नाम है भगवान के लिए? किट्टू। हाँ, किट्टू बोलते हैं ना, कन्नन, कन्नन, कन्नन बोलते हैं, कन्नन। कृष्ण को कन्नन बोलते हैं, और कहां और जाएंगे कान्हा बोलते हैं, कहीं और किशन बोलते हैं। एक बार ऋषिकेश में हमारे भक्त गए थे, आश्रम भी स्थापित की थी, तो हुआ ये कि वहाँ के लोग थोड़े आक्रमणात्मक भाव से मंदिर में आए थे, ये लोग हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं। बोला हम लोग कैसे संस्कृति को खराब कर रहे हैं? बोला हमारे किशन भगवान को आपने कृष्ण बना दिया है। तो वो भगवान कृष्ण का उच्चारण ठीक से नहीं करते, उनके लिए किशन है, तो किशन आपने वो सोचते हैं कि हमारा भगवान किशन है, इनको ने कृष्ण क्यों बना दिया। तो खैर कान्हा हो, कन्नन हो, कृष्ण हो, किशन हो, हैं तो एक ही भगवान न? तो जिस भाषण में भी हमें भगवान का गुणगान करना हो, जिस संस्कृति में करना हो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं श्री कवि यहाँ पर कि मनुष्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हर जगह, हर शहर में, हर गांव में लोग इकट्ठे आकर भगवान का गुणगान करें, इससे सारे समाज का भला होगा और इस तरह से हमारा समाज जो है बिल्कुल सुखी रहेगा। कोई भाषा का भेद नहीं इसमें, भगवान सारी भाषाएं समझ लेते हैं। हालांकि कृष्ण ये नाम सबसे मधुर और सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि ये कृष्ण नाम के अंतर्गत सारे चीजें आ जाती हैं। कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक। तो यहां श्री कवि बता रहे हैं हमें श्रवण कीर्तन भक्तों के संग में आकर जितना हो सके उतना करना चाहिए। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक वो कहते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है ये भी, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यतो रोदति रोदि गायति उन्मादवन नृत्यति लोके बाह्यः। वो कहते हैं कि इस तरह से जिस भक्त ने एक व्रत लिया है सदैव भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का, गुणों का, लीलाओं का कीर्तन करने के लिए, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, तो उसको अपने मन में भगवान कृष्ण का कोई विशेष रूप, कोई विशेष नाम उत्पन्न होगा और इस रूप और इन नामों के प्रति उसके हृदय में अनुराग या तीव्र आसक्ति उत्पन्न होगी। वो अभी भगवान के कीर्तन गायन गुणगान से अलग नहीं रह सकता। जिस तरह से शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, सिगरेट पीने वाले को जिसकी नशा हुई है वो सिगरेट के बिना नहीं रह सकता। हमें याद है हम ट्रेन में एक बार जा रहे थे तो एक व्यक्ति इतना सिगरेट पी रहे थे, हमको बोलना था कि आप जरा दूसरे जगह जाके पिए, यहाँ धुआं से कष्ट हो रहा है। वो विचलित हो गए, गांव के व्यक्ति थे वो, हम कैसे जिएंगे बोल रहे हैं। देखिए ये समस्या है। और ये बात कि रात को वो सो रहे थे, रात को बीच में उठ के भी पीने लगे, रात को उठे नींद से, क्या आवाज, क्या आ रही, धुआं कहाँ से आ गया, कहीं आग तो नहीं लग गई, देखा तो ये चुपके अभी पी रहे हैं, क्योंकि रात में उठ के भी आदत हो जाती है। तो देखिए आसक्ति जो संसार के प्रति है, संसार के वस्तुओं के प्रति है, यही आसक्ति हमारे भगवान में होती तो कितना अच्छा होता। तो ऐसे बार बार सत्संग में आने से, भगवान का गुणगान करते रहने से भगवान के प्रति एक आसक्ति बढ़ जाएगी। फिर संसार में जो उथल पुथल होता है उससे विचलित न होकर हम हमारी भक्ति करते रहेंगे। संसार का उथल पुथल तो निश्चित है ही, गड़बड़ के लिए ही तो भगवान ने संसार बनाया है, एक भी क्षण शांति का नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरण हम ग्रहण करेंगे और भक्तों के संग में आके अधिक से अधिक कीर्तन गायन इत्यादि सब करेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा, भगवान के प्रति तीव्र आसक्ति हो जाएगी। जात अनुराग है, ऐसे अनुराग उत्पन्न होगा। द्रुत चित्त ही, हमारा चित्त पिघल जाएगा और ऐसे पिघले हुए चित्त से हम क्या करेंगे, हसति अथो रोदिति रोति गायति उन्मादवन नृत्यति। सो ऐसे जिसने व्रत लिया है भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणों का कीर्तन आदि सतत करते रहने के लिए, ऐसे व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है और भगवान का नाम कीर्तन गुणगान करते करते कभी हंस देता है, कभी रो देता है, कभी चिल्लाता है, कभी चुप बैठ जाता है और कभी कभी उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य है, उन्मत्त तो होकर नृत्य भी करने लगता है। लोक बाह्य है मतलब बाहर के लोगों की परवाह न करते हुए कि लोग क्या बोलेंगे। अब ये एक स्वाभाविक बात है, कई लोग चिढ़ जाते हैं हरे कृष्ण भक्तों को नृत्य करते हुए देखकर, बोलते हैं आपकी भक्ति ये सब ठीक है लेकिन आप लोग नाचते क्यों हो, चुपचाप बैठ के कीर्तन नहीं ले सकते, चुपचाप बैठ के भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता क्या। वैसे दक्षिण भारत में एक जो रहने वाले भक्त हमारे बता रहे थे कि वो एक बार गए थे एक जगह, तो वहां श्री संप्रदाय के एक सन्यासी आए, तो उनका कोई मंदिर था और उनके मंदिर के पास में एक हरे कृष्ण का मंदिर था। तो वो सन्यासी उस श्री वैष्णव मंदिर में आए थे, तो वो बैठे और उन्होंने सुना कि पीछे कुछ कीर्तन चल रहा है, तो उन्होंने पूछा ये कौन लोग हैं, कहाँ से कौन सा मंदिर है। तो ये हरे कृष्ण वालों का मंदिर है, वो लोग कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा, तो उनको यहाँ बुलाओ। तो सारे भक्त वहां से आए और उनको कहा कीर्तन करो और नाचो, खूब नाचो। तो बाकी जो पुजारी लोग खड़े थे उनको, वो ऐसे खड़े थे हाथ ऐसे होके गंभीर होके, उन्होंने बोला देखो नम्मालवार, वो एक आलवार थे, तो नम्मालवार ने ऐसे कहा है, उन्होंने तमिल भाषा में कुछ सुनाया उनको और कहा कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो ऐसे हमारे हाथ ऊपर होने चाहिए और हमें ऐसे आसमान तक कूदना चाहिए और हमारे जो पैर हैं वो पीछ पीठ को लगने चाहिए, ऐसे हमें नृत्य करना चाहिए भगवान का नाम लेते समय। तो उन्होंने हरे कृष्ण भक्तों को प्रोत्साहन दिया, करो करो और कीर्तन करो। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने नव योगेंद्रों के पथ पे ही चल के नाम संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है, हरि नाम संकीर्तन, जिसमें वो कीर्तन और नृत्य भी किया करते थे। और बिल्कुल ऐसे ही महाप्रभु कीर्तन के समय विशेष करके रथ यात्रा के समय नृत्य किया करते थे। परंतु यहाँ पे एक चेतावनी प्रभुपाद जी देते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि इसमें दिखावा नहीं करना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि चलो जो व्यक्ति उन्माद उन्मत्त अवस्था में नृत्य करता है कीर्तन के समय वो भगवान का शुद्ध भक्त है, तो हम भी ऐसे ही नकल करेंगे तो ऐसे नकल करने से क्या होगा, फिर उत्पात केवल हो जाता है। हरिदास ठाकुर का नाम तो आप सबने सुना होगा, हरिदास ठाकुर तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, सतत भगवान कृष्ण का नाम लेते थे। तो एक बार वो चलते हुए कहीं से जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैठ के वाद्य बजा रहा था और उसके सामने एक सांप जो है वो झूम रहा था। ऐसे दृश्य आपने कहीं कई जगह देखा होगा, और वो सांप झूम रहा था और ये बजा रहा था अपना वाद्य, और कई लोग इकट्ठे हो गए थे सांप को देखने के लिए, और फिर ये व्यक्ति ने वाद्य बजाना बंद कर दिया और उसने श्रीमद् भागवत से श्री कृष्ण के काल्य दमन की लीला के श्लोक बोलना शुरू कर दिया। और जब ऐसे ये गुणगान कर रहा था तो हरिदास ठाकुर वहां आए, उन्होंने उस नाग को देखा, काल्य का स्मरण आया कि कैसे श्री कृष्ण उसके फणों के ऊपर नृत्य करते थे, और इस लीला का स्मरण करते हुए भाव विभोर होकर जमीन पर गिर पड़े, और गिर पड़े तो उनके शरीर में सारे अष्ट सात्विक विकार आने लगे, शरीर का कंपन होना, रोंगटे खड़े हो जाना इत्यादि। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए हरिदास ठाकुर के भक्ति को देखकर, हरिदास ठाकुर की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे। और उधर एक और ब्राह्मण था, उसने सोचा अरे बड़ी अच्छी बात है, तो ऐसे हम भी करेंगे, हम भी थोड़ा शरीर को हाथ पैर फैलाएंगे तो फटफट कुछ करेंगे हम भी, और फिर लोग हमें भी बहुत बड़ा भक्त मानेंगे। तो उन्होंने भी ऐसे आवाजें करने शुरू कर दिया और गिर पड़े जमीन पे, नकल कर रहे थे। तो सांप के लिए जो वाद्य बजा रहा था उसने उठा, लाठी लिया, खूब पिटाई की उस व्यक्ति, और वो व्यक्ति चिल्लाने लगा अरे मेरी पिटाई क्यों करते हो, देखो उस व्यक्ति ने ऐसे किया, आप उनकी प्रशंसा करते हो और मैंने जब वही चीज की मेरी पिटाई करते हो। तो फिर वो उस व्यक्ति ने कहा ये सच्चे भक्त हैं, इनका नृत्य जो है ये भक्ति से, ये अष्ट सात्विक विकार ये भक्ति से आ रहे हैं, तुम्हारी ये सब ये नकल है, ये सब ढोंग है, इसलिए हम तुम्हारी पिटाई कर रहे हैं ताकि तुम समाज में उत्पात पैदा नहीं करो। तो विशेष करके जब हम मंदिर में भी कीर्तन करते हो और विशेष करके जब बाहर जाते हैं जैसे रथ यात्रा के समय या नगर संकीर्तन में जा रहे होते हैं, अवश्य हमें उत्साह से कीर्तन करना चाहिए, उत्साह से नृत्य भी करना चाहिए, परंतु इस तरह नृत्य नहीं करना चाहिए कि देखने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगे। कई बार आधुनिक सिनेमा के नृत्य की तरह भी लोग नृत्य करना शुरू करते हैं कीर्तन करते समय, खास करके जो अनुभवी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कैसे नृत्य किया उनको पता नहीं, प्रभुपाद जी ने कैसे नृत्य करके दिखाया उनको पता नहीं। तो ऐसे इस तरह से करते हैं नृत्य कि अच्छा नहीं लगता, इसमें भक्ति भाव नहीं लगता है। तो इस तरह से नृत्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, भले हम भक्ति भाव से भी करें, हमें कभी अकेले में आकर नृत्य करने की आवश्यकता नहीं, भक्तों के संग में रह के ही करना चाहिए, कहीं दूर अलग से होके हम करें। क्यों? क्योंकि हमारा नृत्य है प्रदर्शनी नहीं है, अन्यों को आकर्षित करने के लिए कुछ प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए बड़े प्रेम से बड़े मधुर ढंग से कीर्तन और नृत्य करते हुए जाएंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग कितने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देखो कितने हर्ष और उल्लास से ये लोग नृत्य और कीर्तन करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में, वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं इसके लिए कि कैसे हंसती रोदती रोती गायती इत्यादि। वो कहते हैं कि एक बार एक भक्त जो है शुद्ध भक्त है वो सुन रहे थे, दूसरा भक्त कोई लीला का वर्णन कर रहा था और लीला ये चल रही थी कि श्री कृष्ण किसी दूसरे गोपी के घर में मक्खन चोरी करने के लिए गए थे। उस गोपी का नाम था जरती। अब जरती अन्य गोपियों की तरह सदैव सतर्क रहती थी कि वो चोर हमारे घर में नहीं आए, सारे मक्खन इत्यादि चोरी करके भाग जाता है। तो इस समय जरती ने देखा वो रहा आया आया वो, देखो यशोदा का पुत्र आया, पकड़ो उसको, पकड़ो, अंदर चोरी करने नहीं देना। तो कृष्ण वहां से जल्दी से भाग गए। तो ये दृश्य अपने ध्यान में भी वो भक्त देख रहे थे। तो उनके ध्यान में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, ये लीला प्रकट हुई, तो जोर से वो हंसने लगे। ये गोपी जरती के चिल्लाने को देखकर और कृष्ण के भाग जाने के दृश्य से देखकर, और फिर अचानक उनके मन से कृष्ण अदृश्य हो गए। तो बहुत उदास हो गए, रोने लग गए कि कृष्ण कहाँ गए, आप मेरे मन में अभी आए थे। और जब इस तरह से भगवान को पुकारा तो भगवान क्या था, अभी अभी मैं आ रहा हूँ, आप तुम्हारे साथ में ही हो। फिर उनका वो मन चित्त शांत हो गया, फिर हंसमुख चेहरे से बैठ गए। बिल्कुल ऐसे ही सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन है। जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बच्चे थे तो इतनी भक्ति उनके अंदर थी कि प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन अपने आंखों के सामने वो करते थे। और यही हसत्यतो रौदति रौति गायति उन्मादवन नृत्यति लोक्य बाह्य, ऐसे ही होता था। और अन्य लोग नहीं समझ पाते थे कि ये बच्चा कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी कूदता है, कभी शांत बैठा रहता है, कभी उदास सा रहता है। कुछ समझ में नहीं आते बच्चे का भाव कैसे है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कभी कभी जब प्रहलाद महाराज भगवान को देखते तो बहुत हर्षित हो जाते थे, खुशी से नाचने लगते थे, गाने लगते थे, फिर अचानक भगवान ओझल हो जाते थे, फिर उदास होकर रोने लग जाते थे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कभी कभी एक छोटा बच्चा अपने माँ के लिए रोता है और माँ दूर से आती है और कहते है आ रही हूँ रोना बंद करो, और बच्चे माँ को आके आते हुए देखता है तो तुरंत उसका दुख मिट जाता है और माँ को देख के उसके चेहरे में हंसी आ जाती है। ठीक उसी तरह से जब भगवान ओझल हो जाते थे प्रहलाद महाराज के अंतःकरण से और प्रहलाद रो पड़ते थे, फिर भगवान कहते थे आ रहा हूँ, फिर भगवान का दर्शन पुनः करते थे, फिर से वो हर्षित हो जाते थे। इस तरह से प्रहलाद के हृदय में क्या चल रहा था वो किसी को पता नहीं चलता था, केवल प्रहलाद को पता था। जब हिरण्यकश्यप ने चुनौती दी प्रहलाद को कि आए तुम्हारे विष्णु, तुम्हारे भगवान सामने, कहाँ है तुम्हारे भगवान, अब देखते हैं कि वो तुम्हें कैसे बचाएगा। और उस समय प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान का दर्शन उस खंभे में पहले से कर रहे थे। और जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि उनका बेटा उनकी ओर नहीं देख रहा, खंभे की ओर देख रहा है, उनको और गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे भगवान विष्णु इस खंभे में है? तो प्रहलाद साहब, हमने देख ही रहे हैं खंभे के अंदर है। बोला हाँ है, यहीं पे है। हिरण्यकश्यप नहीं देख सकते थे। फिर प्रहलाद ने, हिरण्यकश्यप ने उस खंभे को तोड़ दिया और अंदर से भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। तो ये वर्णन जो है ये शुद्ध भक्तों का वर्णन है, फिर भी हमारे लिए एक आदर्श है। एक न एक दिन हमें भी इस अवस्था में पहुंचना चाहिए जबकि हम अपने अंतःकरण में अन्यों की बुराई को, अन्यों के इसके नहीं देखकर हम भगवान का स्मरण कर सकें। हमको इधर उधर के प्रजल्प को न देखकर हम भगवान को समझ सकें। तो कब वो दिन आएगा जब भगवान हमारे हृदय में उस तरह से प्रकट होंगे जैसे प्रहलाद के हृदय में प्रकट हुए थे, ये हमारी प्रार्थना भगवान के सामने होनी चाहिए। फिर आगे श्री कवि कहते हैं, तो हर चीज को इस दुनिया में भगवान की शक्ति समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। हर चीज का संबंध भगवान से देखना चाहिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रील जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि जैसे हमारी दृष्टि वैसे ही उस हमारे मन के आरोप मन के इच्छाओं का आरोप हम संसार पर लगाते हैं। आत्मवान मन्यते जगत, यदि मैं लोभी हूं तो सबको लोभी समझूंगा। यदि एक लोभी व्यक्ति, जीव गोस्वामी बताते हैं, वो वन में भी जाए तो वो क्या सोचेगा, अरे वाह कितने पेड़ हैं, इनको काट के कितना पैसा मिलेगा। देखो इतना लकड़ी, एक पेड़ जाएगा, इतना कीमत इसका होगा, ठीक है, खर्चा आने जाने का इतना लगे, मुनाफा इतना, अरे वाह बहुत अच्छा। तो जिसकी वृत्ति वैसी है वह जंगल में भी जाएगा तो ऐसे ही विचार करेगा। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कोई कामुक व्यक्ति है, वो जहां भी जाएगा उसकी दृष्टि ऐसे ही रहेगी। उसी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त, उसकी दृष्टि प्रेम से प्रेरित होती है। संसारी व्यक्तियों की दृष्टि लोभ से, काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से आदि प्रकट या प्रेरित होती है, परंतु शुद्ध भक्तों की दृष्टि शुद्ध प्रेम से प्रेरित होती है। जब भी वो देखते हैं, जहां भी जाते हैं, कृष्ण को देखते हैं, क्योंकि ये कृष्ण की संपत्ति है। कृष्ण का संबंध जब सब जगह हम देखेंगे तो अवश्य, और उसके बाद फिर नाम संकीर्तन करेंगे तो फिर निश्चित ही ये सारे भक्ति के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। जहां तक हसत्यतो रोदति रोति गायति इत्यादि का प्रश्न है, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में रह के खूब नाम संकीर्तन करते थे भक्तों के साथ सड़कों पर, जो मायावादी सन्यासी थे, जो कि निर्विशेषवादी थे, भगवान को निराकार समझते थे, भगवान में लीन होना इसे जीवन का उद्देश्य समझते थे, ऐसे लोगों ने निंदा की चैतन्य महाप्रभु की कि ये किस तरह से के सन्यासी हैं। सन्यासी को चाहिए कि वो चुपचाप बैठे आश्रम में वेदांत का पठन करे, तपस्या करे, परंतु ये सन्यासी तो भावुक लोगों की तरह सड़क में कीर्तन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के कानों पर ये सब खबरें पड़ी कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। फिर उनके एक शिष्य थे, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा कि ये हमसे हमको सहन नहीं हो रहा है, तो इनको मिलाना चाहिए चैतन्य महाप्रभु से, महाप्रभु की कृपा इन पर होनी चाहिए। तो उन्होंने जाके उन सारे सन्यासियों को बुलाया। उनके नेता थे प्रकाश आनंद सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु को भी वहां बुलाया। जब चैतन्य महाप्रभु वहां आए तो नम्रता पूर्वक वो एक निम्न श्रेणी के स्थान में बैठे रहे, जहां के लोग आके पहले पैर धोते हैं। तो प्रकाश आनंद सरस्वती को अच्छा नहीं लगा कि अरे रे रे देखो ये भी सन्यासी है और नीचे गंदे जगह में बैठे हैं। तो वो उठे, चैतन्य महाप्रभु के हाथ पकड़ के उनको ले आए, आइए आइए गोस्वामी, आप हमारे साथ में बैठिए, आप हमारे भाई हैं, ऐसे अकेले वहां नीचे मत बैठिए। फिर बातचीत होने लगी। प्रकाश आनंद सरस्वती कहने लगे, हमने सुना है कि आप केशव भारती के शिष्य हैं, भारतीय संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं, जो हमारे शंकर संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो शंकर संप्रदाय में तो हम लोग वेदांत का अध्ययन करते हैं, और हमारे संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद आप ऐसे भावुक लोगों के बीच में सड़क पे नृत्य कीर्तन करते हैं, कुछ समझ में बात नहीं आई। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, देखिए बात ये है कि जब मैंने गुरु से दीक्षा ली तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि देखो तुम बड़े मूर्ख हो, तुमको वेदांत क्या समझेगा, तुम वेदांत नहीं समझ पाओगे, तुम केवल नाम संकीर्तन करो। इसलिए मैंने नाम संकीर्तन करना शुरू कर दिया, और नाम संकीर्तन करते करते कुछ मेरे हृदय में होने लगा, और फिर थोड़े दिनों के बाद मैं मेरे गुरु महाराज के पास गया
और उनसे क्या कहने लगा, धैर्य धारिते नारी होइलाम उन्मत्त हासे कादि नाची गाई यच मदमत्त।
किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारा बाल, आप किस तरह के मंत्र दिए हैं मुझे गोस्वामी? गुरु महाराज, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो आपने हमें दिया है, पता नहीं इसमें क्या शक्ति है। जब से मैंने ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया, तब से मैं उन्मत्त हो रहा हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी गाता हूँ, कभी रोता हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं पागल हो गया हूँगा।
तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं।
तो उनके गुरु महाराज हंसते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, ये पागलपन का लक्षण नहीं है, ये अहो सौभाग्य का लक्षण है। भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर है कि ये कृष्ण प्रेम के लक्षण तुम्हारे अंदर प्रकट हुए हैं। कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। देखो, भगवान के नाम के गुण ऐसे हैं कि जो व्यक्ति इनको स्वीकार करता है, इनका उच्चारण करता है, तो उसके मन में अपने आप ही भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो इस तरह से हर चीज का संबंध संसार में भगवान से देखते हुए
हम भगवान का गुणगान करेंगे,
नाम संकीर्तन करेंगे, तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और अंत में फिर एक सुंदर श्लोक यहाँ श्री कवि कहते हैं, इसका पाठ हम अभी करते हैं। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्रतः स्योः तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम् भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्रतः स्योः तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम्। हाँ, एक प्रभु जी एक माता जी बोलिए। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्रुतः स्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघासम् भक्ति परेशानुभवो विरक्तिः अन्यत्र चैष त्रिक एक कालः विमानस्य यथाश्रतः स्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघासम्। अनुवाद। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कौर में आनंद, पोषण तथा भूख से छुटकारा, ये सभी एक साथ और अधिकाधिक होते जाते हैं। भक्ति की तुलना यहाँ खाने के कार्य से की गई है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हरे ग्रास से, हरे कौर से क्या होता है? तीन चीजें होती हैं एक साथ में, त्रिका एक काल है। तुष्टि, आनंद मिलता है, पुष्टि, पोषण मिलता है, क्षुद अपाय, भूख मिट जाती है। ये तीन चीजें एक साथ होने लगती हैं जैसे जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक उसी तरह प्रपद्यमानस्य, जब किसी कोई व्यक्ति भगवान के शरण को ग्रहण करता है तो फिर उसके हृदय में तीन चीजें एक साथ होने लगती हैं, भक्ति, भगवान का अनुभव और कृष्ण से जो भी संबंधित नहीं है ऐसे चीजों से विरक्ति। तो ये बहुत सुंदर बात है। जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि जब भोजन करते हैं, जब संतुष्ट हो जाते हैं तो ये हमारे भक्ति की तरह है, क्योंकि इससे आनंद मिलता है। और भगवान का जो अनुभव है वो पुष्टि के समान है, क्योंकि ये हमें पोषित करता है आगे बढ़ने के लिए भगवान के रास्ते में। और तीसरी बात, अन्यत्र विरक्ति, ये भूख के मिटने के बराबर है, क्योंकि जो एक तृष्णा होती है चीजों को प्राप्त करने के लिए तो वो भूख आदि वो सब मिट जाती है। तो ऐसे भगवान की सेवा करते करते अपने आप हम ऐसे प्रगति करने लगते हैं। और श्री कवि फिर कहते हैं कि इस तरह जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करता है, सतत ऐसे इनमें रत रहता है, तो उसे शीघ्र ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा और परम शांति की प्राप्ति करेगा, अपने परम कल्याण को प्राप्त करेगा। तो श्री कवि के उत्तर का सारांश ये है कि सबके लिए सर्वोच्च हित या कल्याण ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन और गुणगान के पथ के द्वारा उनके शुद्ध भक्त बने, और ऐसी शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने से उनका जीवन सफल हो जाता है। तो इसके साथ महाराज निमि के पहले प्रश्न का उत्तर नवयोगेंद्र देते हैं। अब रहे आठ प्रश्न, इनकी चर्चा कभी और हो सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये परम कल्याण का मार्ग है, तो बांटना चाहिए सबको, सबको इसके बारे में बताना चाहिए, इसको प्रचार कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के ज्ञान का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से बड़े पैमाने पर करने का आदेश दिया है। यहाँ भी श्री श्री राधा गोकुल आनंद मंदिर में यथाशक्ति हम सब मिलकर आप सब के भक्तिभाव के कारण यहाँ प्रचार कर रहे हैं। एक और सुंदर कार्यक्रम अब आने जा रहा है अक्टूबर महीने में, गीता रहस्य प्रतियोगिता। पहले ये प्रतियोगिता केवल पाठशालाओं के विद्यार्थियों के लिए हुआ करता था, वो तो रहेगा, जो छठे से दसवीं कक्षा तक है उनके लिए गीता रहस्य कनिष्ठ ये एक प्रतियोगिता होगी, जिसमें कि उन्हें पुस्तक दिया जाएगा। विशेषकर इसमें कई हमारे सारे तो भगवद गीता का सार है, रहस्य है, संक्षिप्त रूप में होगा। तो वो बच्चों के लिए जो छठी से दसवीं कक्षा में हैं, और एक गीता रहस्य की प्रतियोगिता होगी बड़ों के लिए, ग्यारहवीं कक्षा के बच्चों से लेकर 60 70 80 वर्ष के बच्चों तक के लिए भी, सब के लिए। तो ये प्रतियोगिता भी, इसके लिए भी अलग से पुस्तक दी जाएगी, इसके लिए इसमें कोई भी शामिल हो सकते हैं। तो ये प्रतियोगिता होने वाली है, इसके लिए समय है, 3 महीने 4 महीने हैं अभी तक, लेकिन फिर भी इसके लिए सेवा की आवश्यकता है, तो आप में से जो इसमें सेवा करना चाहते हैं, ये कई वर्षों से हम यहाँ स्कूलों में करते आए हैं बेलगाम जिले में, और आप सब ने बहुत सेवा की थी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब आने वाले वर्ष में भी आशा करते हैं कि आप सेवा करेंगे ऐसे, और ये प्रचार के आनंद को बांटेंगे, केवल अपने आप तक नहीं रखेंगे। सही आनंद का अनुभव करना है तो उसको बांटना भी चाहिए। अपने आप के लिए केवल रखेंगे तो फिर वो आनंद खत्म हो जाएगा। तो आपके नाम अवश्य दीजिए, आगे चल के इसके बारे में आप सूचनाएं भी सुनेंगे। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।